शरणं प्रपद्ये संख्या 9 और 10
स्थित्वा स्थाने
सरोजे प्रणवमय मरुत् कुंडले सूक्ष्म मार्गे शांते श्वांते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योति रूपे पराखे लिंगज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतम् शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो नग्नो निःशङ्गशुद्ध त्रिगुण विरहितो ध्वस्तमोहांधकारे नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदित भवगुणो नैव दृष्ट कदाचिन् उन्मन्यावस्थया त्वां विगत कलिमलं शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो हे महादेव हे शिव शंकर मे पराध क्षन्तव्य इस जीवन से जो भी अपराध किया चाहे वो जान करके हो जानता अजानता पीबा जान करके किया हो अथवा अनजाने में हो गया हो हे शंकर तुम इस अपराध को क्षमा करो। भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे ओर से कृपा अनुकंपा की कोई कमी नहीं है, इस प्रणव में समस्त शक्ति तुम भर करके रखा और इस प्रणव को आश्रय करके ओंकार को आश्रय करके मैं उस सरोज में सहस्र कमल में सहस्र दल कमल में स्थित हो सकता था, परंतु हे ईश्वर न शांति अंत तो शांत हुए ही नहीं, शान्ते श्वान्ते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योतिरूपे पराख्ये। इस इंद्रियों को तो हमने शांत नहीं कर पाया है ईश्वर, चूंकि कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय शांत नहीं हुए, इसलिए श्व शांत है, मेरा मन भी शांत नहीं हो पाया। और ये मन, यह अंतस जो समस्त विभव का प्रकटन करने वाला जो ईश्वर है, जो अष्टदल उपरिवेष्टित जो लिंग है, जो ज्योति है, जो परम ज्योति है पराख्य, उससे और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वहां पर उस ज्योति में जाकर के प्रलीन होना था, इस चित्त वृत्ति को, इस मन को विसर्जित करना था, परंतु हे ईश्वर शांति श्वांते, विषयों की तृष्णा इस मन को ऐसा विचलित किया जे परम शांति रूप पराख्य रूप परम ज्योति रूप जो तुम्हारा लिंग शिव, जो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, उस प्रणव को लेकर के भी हम उस परम ज्योति तक पहुंच सकते हैं। लिंग गे ब्रह्म वाक्ये सकल तनुगतम, सर्वत्र तुम हो, इतनी ब्रह्म वाक्य है, वेदांत वाक्य है, शास्त्र वाक्य है, सभी वाक्य उस अद्वैत परब्रह्म सर्वांतर जामी में ही निहित है, तात्पर्य है। और केवल वाक्य के द्वारा ही नहीं, शब्द के द्वारा ही नहीं, सकल तनुगतम, सभी शरीरों के अंदर तनुगतम, प्रत्येक घट घट में, प्रत्येक शरीर में तुम अनुगत हो हे ईश्वर। फिर भी मैं तुम्हें स्मरण नहीं किया। सकल तनुगतम शंकरं न स्मरामि। तुम सर्वत्र हो, शास्त्र संत जन इसी बात का कथन करते हैं, शास्त्र वाक्य को सहारा बना करके मैं अपने अंतस तक पहुंचता, काश तो तुम मिल जाते। परंतु इंद्रियों की जो परवशता है ईश्वर, मैं तो शांत हो ही नहीं पाया। और चूंकि इंद्रिय चंचल है, अशांत है, इसलिए श्व अंतः अपने अंदर भी जा नहीं पाया। परांचिकानि व्यतिणत् स्वयंभू तस्मात् परात् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमक्ष आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, परां चिखानी व्यतृणत् स्वयंभू। ये स्वयंभू ब्रह्मा प्रजापिता ने इस जीवों के साथ एक अन्याय किया। परांची खानी, खानी मतलब इंद्रियाणी, सभी इंद्रियों को बहिर्मुख करके बनाया। ये हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। अगर वो अंतर्मुख देते तो शायद हमारा मन अंतर्मुख हो जाता। परांचि खाने व्यतृणत् स्वयंभू। और उनका ऐसा ही निर्माण है, सृष्टि है, इसीलिए तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन। इसलिए पराग पश्यति, अपने से बाहर ही वो इंद्रिय देखना, सुनना, जानना चाहते हैं। नान्तरात्मन, अंतरात्मा को देखना नहीं चाहते इंद्रियां। परंतु ऐसा नहीं कि हमेशा सब लोग ऐसा ही बाहरी मुख होकर के ही जीवन को चला रहे। जो धीर है, जो धैर्यशील है, कश्चित् धीर, जो धीर है, धैर्यशील है, प्रत्यगात्मानमक्षत, वो प्रत्यगात्मा को अक्षत देखता है, देखने के लिए प्रचेष्टा करते हैं। आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। वो आवृत्त चक्षु, आंखें बंद कर लेते हैं। महाराज, हम भी आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने विषय ही, वासना ही तो आते हैं। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी लिखते हैं, आवृत्त चक्षु इति नतु चक्षु अंतरिंद्रिया मन एव। जो अंतरात्मा को देखना चाहते हैं, वो सभी इंद्रियों के मूल में जो मन है, उस मन को वो घुमा देते हैं। आवृत्य चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। अगर भाई अमृतत्व की चाह है तो बाहर से मिलने वाला नहीं है। बाहर के अमृतों को, बाहर के जहरों को हम अमृत मान करके उठा करके और ज्यादा दुखी हो गए। ऋषि, कठ ऋषि कहते हैं, अगर अमृतत्व को पाना है तो फिर आवृत्त हो जाओ। और भगवत पाद आचार्य शंकर कहते, श्वान्ते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योति रूपे पराख्ये। अगर चित्त शांत हो जाए, मन बिल्कुल स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, निर्मल हो जाए, तो उसी निर्मल मन से में ही प्रकटित विभवे, वो प्रकट होते नारायण। कौन सा वो, क्या रूप है उनका? ज्योति रूपे पराख्ये। वो ज्योति रूप है, वो परम ज्योति, आत्म ज्योति, वही प्रकट होते हैं। भक्त प्रार्थना करते हैं, ईश्वर, मैं कितना बाहर दौड़ धूप में लगा, शायद जीवन में कहीं तुम्हारे खोज भी मैंने किया, परंतु बाहर आज इस अवस्था में आकर के पता लग रहा है। जो ब्रह्म वाक्य है, जो उपनिषद प्रतिपाद्य है, वो उपनिषदों की जो तात्पर्य है, सकल तनुगतम, जो सर्वत्र घट घटवासी, वो जो ईश्वर है, सब में जो तुम हो, सबके अंतरात्मा के रूप में रह करके, अंतर्यामी के रूप में रह करके सबको नियमन कर रहे हो। हे ईश्वर, फिर भी स्मरण नहीं हो पाया। शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध, मेरे अपराधों को क्षमा करो हे शंकर। शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे शंकर हे महादेव क्षमा करो। दशम श्लोक में आकर के भक्त प्रार्थना करते हैं। नग्नो निशंग शुद्ध त्रिगुण विरहितो ध्वस्त मोहांधकारे। नग्न, कोई आवरण नहीं जो तत्व है, अनावृत कोई आवरण नहीं, नग्न। भाई ये नग्नता जो है ना, सबको लाना है। हम जब जन्म लेते हैं हमारे शरीर में एक धागा भी नहीं होता, और इस नग्नता को आवृत करने के लिए हम सब कुछ ओढ़ते हैं, परंतु एक समय ऐसा उपस्थित होता है कि वो सब उस शरीर से कपड़े उतार दिया जाता है। नग्न केवल बाहरी तन के आच्छादन के लिए नहीं, निशंग जीवन में निशंगता बहुत जरूरी है। नारायण, निशंग मतलब आसक्ति राहित्यम, आसक्ति रहित होना। अगर जीवन में आसक्ति है तो फिर उस आसक्ति के जरिए ही हम बाहर भटकते हैं, परमात्मा अस्तित्व तक हम पहुंचने की चेष्टा नहीं करते। भक्त प्रार्थना करते हैं, निशंग शुद्ध, जो निशंग है, जो वासना कामनाओं से रहित है वही शुद्ध है। शुद्धि किस बात की है? बाहरी मृद जलाभ्यम शुद्धो न तु शुद्धम। बाहर से जो हम शुद्धि करते हैं वो शुद्धि शायद जरूरी है, परंतु जिनके मन बड़ा पवित्र है, जिन्होंने स्वयं ज्योति पराक्ष को प्राप्त कर लिया अथवा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को आवृत कर लिया, वो निशंग शुद्ध। शुद्ध के लिए कहते त्रिगुण विरहितो सत्व रज तम। ये त्रिगुण है हमारे जीवन को, ये त्रिगुण जो है बिल्कुल प्रभावित करके रखा, मथ करके रखा। अगर जीवन में परब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्वम सुखे संजयति, सत्व में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जीवन से रज और तम पूर्ण रूप से मार्जन की आवश्यकता है। शुद्ध त्रिगुण विरहितो ध्वस्त मोहांधकार। क्या प्रार्थना है कि मेरा, मैं धसा हुआ हूं कहां पर? मोहांधकारे। एक तो आसक्ति, निशंगता का अभाव, द्वितीय अशुद्धि, तृतीय मोहांधता। ये तीन के द्वारा हम ऐसे कीचड़ में धसे हैं महाराज, जिस चित्त के द्वारा, जिस जीवन के द्वारा नासाग्रे न्यस्त दृष्टि, जो कि नासाग्र में अपने दृष्टि को स्थिर करके तुम्हारे अनुभव को, उपस्थिति को मैं समझ सकता था, परंतु मोहांधता, आसक्ति और अशुद्धि, इसके कारण नारायण बिल्कुल जीवन धसा हुआ है। इसलिए भगवत भक्तजन अब इस श्लोक में शास्त्र की जो निर्देश है, कुछ विधि कुछ निषेध। डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं तो दवा के साथ साथ पथ्य भी बतलाते हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं ना, डायबिटीज है, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, परंतु दिन में 3-4 चॉकलेट चल सकता है तो वो मेडिसिन असर नहीं करेगा। जीवन में ऐसा हो जो दवा है नारायण, उसको पूर्ण रूप से त्याग के साथ, वैद्यराज जो बोलते हैं उसको त्याग करो, इसको अपनाओ, फिर वो शरीर को स्वस्थ करते हैं। शास्त्र जब हमें इस प्रकार के बांधते हैं, नियम देते हैं, बतलाते हैं, रोग के उपचार के लिए कुछ त्याग की बात करते हैं, उस समय हम अपने मतलब के वो चॉकलेट खाने का जैसा ही अर्थ निकाल लेते हैं, वो हमारे जीवन को काम नहीं करेगा। जब यहां बतला रहे बारंबार निशंग शुद्ध मोहांधधस्त, निशंगता, जीवन में आसक्ति रहित हो जाओ, जीवन में आसक्ति रहित हो जाओगे तो जीवन में शुद्ध होने की एक संभावना है, और जीवन में एक मोहांधकार में जो पड़े हो, जिस अंधकार में पड़ पड़ करके रो रहे हो, उससे प्रकाश की ओर चलो। कैसे हम जाए, आचार्य लिखते हैं, विषय विषय ही जनासक्ति रूपो दुस्संगत त्याज। विषयी विषय विषयी जनासंगो, ध्यान रखिए, विषय और विषय विषयी जन, जिनके चित्त में विषय के सिवाय और कुछ नहीं है। आपने त्याग किया विषयों का, परंतु आपका उठना बैठना सब विषयी से ही है, तो नारायण वो आपको भाव संप्रेषण कर देगा। इसीलिए आचार्य लिखते हैं, विषय विषयी जनासक्ति रूपो दुस्त्याज, बिल्कुल उसको त्याग करो महाराज। बिना त्याग करके आप कर नहीं सकते, क्योंकि भोग और भोगासक्ति में लिप्त जो पुरुष है, व्यक्ति है, उसके संस्पर्श आने मात्र से भोग ही और भोग प्राप्ति की ही उपायों को हम सुनते रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ना, संगात संजायते, याद है हम सबको है ना, ये उस दिन बहुत सुंदर सुना रहे थे कि नीचे उतरने का सीढ़ी है ना, आप लोग किससे जाते ये जब भी हमको कोई ले जाता है ना, हाय कृष्ण होगा या तो भगवान जी होंगे, ये सब प्रेमपुरी की बड़ी अपूर्वता है। लिफ्टमैन जो होते वो भगवान होगा, नहीं तो राम जी होंगे। मुझे यही लगता है कि भाई ऊपर उठा दो, नीचे मत करो तुम, ये बस नीचे जब उतरते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं कि नहीं, कभी कभी उतरा कीजिए पता लगेगा। कष्ट महसूस होता है, लेकिन हम दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफ में कितनी बार नीचे उतरते हैं, सीढ़ी है। संजात संजायते कामा, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, विस्मृतिर्भ्रंसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लिखा देखो, ये आप लोग बोला, मैं नहीं बोला भाई, प्रणश्यति, भगवान एकदम उतरने का एकदम प्रणश्यति, एकदम खुद नाश हो जाओगे प्रकृष्ट रूप से, और कोई चारा नहीं। ये उतरने का एकदम सीढ़ी बता दिया, चढ़ने का सीढ़ी भी बताया, परंतु वो हम बाद में बताएंगे, पहले उतर ही जाए। इसलिए भगवत भक्तजन ये है संगात संजयते काम, विषय और विषयी जनों के साथ जितना ज्यादा लगाओ उतना ही ज्यादा आप लिप्त। इसलिए और विषय विषयी जनों के साथ होने से, विषय के संग करने से क्या होगा, यही प्रतिशोध, अतृप्ति, क्रोध, राग, द्वेष और पराभव का पर विजय। ये जो खुद को पराजित समझते कि मैं कमी, मेरे में कम है, मेरे में नहीं है, मेरे पास नहीं है, और फिर उसको हम प्राप्त करने के लिए, इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसा संग करो जो जीवन में एक संतुष्टि, जितना मिला जो मिला जैसा भी जिस परिस्थिति में हो उसमें एक संतोष हो। आचार्य कह रहे हैं अगर निस्संगता का अभ्यास करनी है महाराज, विषय विषयी जना रूपो त्याग दुस्त्याज। और हम लोग तो महाराज अपने जीवन में किसको आप त्याग करते हैं? अपने चाय नाश्ता को त्याग कर पाया? डेली लाइफ में आपने क्या त्याग किया? कुछ त्याग है हमारे जीवन में? परंतु है। देखो अपने खान पान में हम कटौती नहीं कर सकते, अपने रहन सहन में कटौती नहीं कर सकते, अपने आहार विहार में कटौती नहीं कर सकते, लेकिन कटौती अगर कर सकते हैं तो फिर अपने भगवान से ही हो, वो समझते। उस समय बड़ा हम ज्ञानी बन जाते हैं कि ईश्वर समझ जाते हैं, ईश्वर हमारे गति को समझते हैं। अरे नारायण इस प्रकार से कहकर खुद को और नीचे न उतारो। अपने जीवन के कामनाओं को हम कोई लगाम नहीं दे सकते, कोई कटौती नहीं कर सकते, परंतु उस साधना पक्ष में, अध्यात्म पक्ष में, श्रवण पक्ष में वो सारा कटौती को, कभी ऐसा आपको लगा कि जैसे लगता है कि तुम बिना हम जी नहीं सकते, कभी हमारे मन में ऐसा तो आया नहीं कि ईश्वर के बिना हम जी नहीं सकते? और जिस दिन ईश्वर के बिना हम जी नहीं सकते ऐसा भाव आएगा, उस दिन नारायण आपके जीवन में प्रार्थना, पूजा, सेवा ये सब स्वतः होने लगेगी। पूजा तो हम प्रत्येक करते हैं, परंतु देह पूजा में ऐसे लगे हैं कि भगवान के पूजा को छोड़ करके हम देह पूजा में और देह के संबंधियों के पूजा में हम लग गए, परंतु उससे हमारा जीवन निस्संगता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा जीवन में हो कि बस संग, एक निराशक्त जीवन हो, एक आदर्श हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, बड़ा प्रसिद्ध वो दोहा, मोसम कौन कुटिल खल कामी। ये अंदर से हो, ऐसे नहीं कि अपने वृत्तियों को, अपने भावों को, अपने चाह को ढकने के लिए ईश्वर के पास अथवा स्थान जैसे तैसे किसी के पास जाहिर कर दो कि मैं तो बड़ा, इससे आपको सपोर्ट नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे कि आप भोग में लग जाओ, वासना में चिपक जाओ, नहीं। अंदर से तुलसीदास जी वो भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं कितना संभालने की कोशिश करता हूं, परंतु कहीं अंदर में ये धसा हुआ है, ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। और फिर उस भाव से वो निकलता है कि मैं कोशिश में लगा हूं, फिर भी नहीं होता है। मोसम कौन कुटिल खल कामी, हरिजन छाड़ी। देखो हरिजन को मैंने छाड़ा, छोड़ दिया, हरि विपुखन की निशि दिन करत गुलामी। एक भजन भी है, हरि जन छाड़ी, हरि जन को मैंने छोड़ा जो हरि के प्रिय है, और निशि दिन महाराज जो हरि विमुखन की संग करे लागे। तो ये है, देखो तुलसीदास जी स्वयं दिखा रहे कि भाई देखो ये है जीवन को अगर निस्संगता है तो खुद विचार करो किसके साथ आप विषयी जनों के साथ जो उठ बैठ रहे उसके साथ थोड़ा चिंतन करो। जिसके साथ जाने से हम दुख होते हैं हमें अथवा दुख को पाने के लिए व्यवस्था कर लेता हालांकि हम समझ नहीं पाते उसकी त्याग करो। देवर्षि नारद लिखते हैं अपने भक्ति सूत्र में दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, एकदम कभी नहीं, दुस्संग सर्वथा हमेशा के लिए त्याग करो। संग सर्वात्मना हेयः, नीतिकार लिखते हैं संग हमेशा त्याग करो। परंतु हमारे नेचर में एक है ना, आपके शब्द बोलूं कि शास्त्र की बोरियत, बोर हो जाना, अकेला बिल्कुल हम पसंद नहीं करते। संग सर्वात्मना हेय सचेत त्यक्तुम न सक्यते, नीतिकार कह रहे अगर संग को तुम त्याग नहीं कर सकते हो, ऐसा है कि संग बिना तुम जी नहीं सकते। सह सदभी सह कर्तव्य, सत्पुरुषों के साथ करो। क्यों? संग जब सर्वात्मना है तो सत्पुरुषों के सन्निधि पाने के बाद आप क्यों कह रहे सताम संगो ही भेषजम, सत्संग जो है आपके लिए तुम्हारे लिए भेषज औषध के रूप में काम करेगा। वृत्तियों को व्यक्तियों को खुद की चाह को जान पाओगे और उस वस्तु के वस्तु स्थिति को वास्तविकता से आप परिचय कर लोगे, फिर एक अटैचमेंट रहित की बात है। इसलिए दुस्संग सर्वथा त्याज्य, तुलसीदास जी कहते हैं ना महाराज कभी भी तुम हे राम हे हनुमान जी कभी भी तुम बुरे संग मत दो, भले तुम नरक में हमको दे दो। क्या भाव देखो, ये सब बुरे संग मत दो, नरक में जाने के लिए हम पसंद करेंगे लेकिन वो बुरे व्यक्तियों के संग मत देना। बरु भल बास नरक करताता, नरक में दे दो। कितना देखो, नरक सुनते ही घबराहट होते हैं, तुलसीदास जी क्या हिम्मत देखो कि नरक में दे देना, परंतु ये दुस्संग के साथ महाराज छुड़ा दो, ये मत दो। ऐसे ही हम बहुत नीचे पड़े गिरे हैं, कम से कम और व्यवस्था करके मत दो, इतनी व्यवस्था तुम कर दो नरक में दे दो। दुष्ट संग जनी देही न विधाता, हे विधाता दुष्ट के संग मत देना। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो संग आसक्ति ये जो निराशक्ति स्थिति इसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति जो है ना स्वर्ग जा रहा था, तो स्वर्ग जाते समय नरक होते हुए जा रहा था। आप लोग इस रोड से कभी जाते हैं कि नहीं? तो इधर उधर नहीं जाना, ये हमेशा प्रेमपुरी के सामने से जाओ, तो कम से कम प्रेमपुरी जी नाम सुनते कुछ तो भाव आएगा कि नहीं। और इधर से चलेंगे तो ये रिलायंस का ज्वेलरी का शॉप मिलेगा, वेब साइट मिलेगा, तो क्या भाव आएगा महाराज। इधर से चलो तो हाँ प्रेमपुरी। और सबसे मुझे सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद तो क्या है, इतना अच्छा लगते कहीं से भी आओ, वो जो ओम रात को जल जाता है महाराज, मैं कितनों को बोला। मैं जब पहले पहले आया आज पहले, तो एयरपोर्ट से हो चाहे स्टेशन से कहां जाना है, तो बाबुलनाथ रोड ये तो याद है, अब एग्जैक्ट क्या एड्रेस है वो तो बाबाओं कैसे पता नहीं। फिर टैक्सी वाले को कैसे बोला, चलो तुम हम बताइए, वो बोलते अच्छा बताए, अच्छा वो देखो ओम दिख रहे ना वो बिल्डिंग ये बड़ा साइन है। इसलिए जब भी जाना है तो इधर से जाओ, याद आए कम से कम। तो वो व्यक्ति जो है स्वर्ग जा रहे हैं, परंतु जा तो रहे स्वर्ग, वो नरक होते हुए जा रहे हैं। तो एक जगह देखते ही बड़ा मौज मस्ती चल रहा है, और देख करके आधा मिनट रुका, अच्छा इतना मौज मस्ती। तो उनके मन में आया कि अरे मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, वहां और ज्यादा मौज मस्ती होगा, स्वर्ग है भाई। तो वो जो है उसमें घुसा नहीं, वो सीधे स्वर्ग पहुंचे महाराज। स्वर्ग पहुंचे तो वहां देखते हैं कि अरे वहां भगवान विष्णु के सिवाय और विष्णु के दो चार सहचर है, सहचरी है, और तो कोई नहीं है महाराज। हाँ हमेशा विष्णु के साथ है, इतना है। दो दिन तीन दिन बोर हो गई। अरे मैं जहां से आया वहां तो बहुत मौज मस्ती और यहां तो कुछ नहीं बस। तो तीन चार दिन पांच दिन छह दिन सात दिन के बाद बहुत ये हो गए तो बोलते नहीं यहां नहीं रहना, ये क्या है, साथ रहो कुछ नहीं, पूजा करो ये करो चलो। तो वो आ गया जहां मौज आया तो देखे सचमुच वहां बड़ा मौज मस्ती डीजी लगा हुआ है, झूम रहे हैं सब लोग। तो घुसे, घुस करके जैसे घुस के गए सब लोग उठकर पकड़ा, चलो 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 लेकर के गए अंदर, जाकर के बहुत कुटाई किया, बहुत पिटाई किया। अरे ये क्या है, वो तो संभाल सोच ही नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, तब तक सब लोग इधर से कूट रहे मार रहे पीट रहे, ये क्या हो रहा है, ये क्या, वो संभाल के बोले ये क्या कर रहे हो, बोले ये नरक है, तुमको पता नहीं था यहां आने से सब पनिशमेंट ही पनिशमेंट। बोले अरे ये जो बाहर से देख रहे मौज मस्ती, बोले वो हमारे एडवर्टाइज कंपनी है, वो एडवर्टाइज है, एड दिया जा रहा था। हमारे संसार में जो भी वो सुख का देखते हैं ना, सुख का ये जो सुखी सुखी वो अंदर महाराज वो नरक बैठा हुआ है, समझ लेना। वो सज्जन बोला अच्छा ये बाहर से जो दिख रहे मौज मस्ती हंसी ये सब ना, बोले ये एडवर्टाइज है, एड है इसमें। महाराज प्रत्येक वस्तु में ये है, हम जो उठाते हैं वो जो मौज मस्ती देख करके सुख का साधन देख करके संग भी करते हैं, विषयों का उपभोग भी कर लेते हैं, इसी चाह से हमें सुख और मौज और मस्ती ये मिले, परंतु हमको पता नहीं कि इसके अंतिम में इसके परिणाम में परिणत में हमें वो दुख मिलेगा। इसलिए आचार्य कह रहे कितना सुंदर, विषय विषयी जना संगो त्याग, केवल विषय को त्याग करने से नहीं होगा, विषयी जन जो विषयी है जिनके चित्त में विषय के सिवाय और कुछ नहीं है उनको त्याग करो और तब जाकर के महाराज थोड़ा कुछ हो सकता है। द्वितीय कह रहे मोहांध त्रिगुण रहित, गुणों के तो जीवन में प्रभाव खूब है, और फिर कहते हैं ध्वस्त मोहांधकार, और मोहरूपी तो मोह की तो क्या विचार, हम लोगों ने पहले भी सुना जीवन में ऐसा मोह है जो उस अंधकार कोठरी से निकलने का कोई और प्रकाश पुंज टिकता ही नहीं है। परंतु भक्त प्रार्थना करते हैं ईश्वर ये सब छोड़ करके कहीं तुम्हारे विभव को गुणों के आधान वो देखना चाहिए था, नासाग्रे न्यस्त दृष्टिर, नासिका के अग्रभाग में हमारी दृष्टियों को टिका करके, विदित भव गुणों, ये भव ये जो तुम्हारे पृथ्वी जल तेज वायु जो विश्व तुम्हारा विभव है वैभव है इसमें जो गुण है उसको मैं जान सकता था, सत्व से हम परिचय हो सकता था। नैव दृष्ट कदाचित, कभी भी मैंने ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया, चेष्टा ही नहीं किया। उन्मन्यावस्था त्वम महाराज, और इसीलिए उन्मन्या बिल्कुल उन्मनी अवस्था में, मतलब मन जहां अमनी हो जाता है विषयों से, मन उन्मन हो गया मथित हो गया, उन्मन्यावस्थया त्वम विगत कलिमलम, और इस मन से जो जिस मन में मल कलुषता मलिनता बिल्कुल विगत हो गया निर्गत हो गया, ऐसा मन से हमने कभी संकरम न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। नग्नो, एक साथ बोलेंगे, नग्नो निशंग शुद्धि त्रिगुण विरहितो ध्यस्तमोहांधकारे नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्ट कदाचित् उन्मन्यावस्थया त्वं विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। हे महादेव, हे शम्भो, हमारे इस अपराध को क्षमा करो। भगवत भक्तजन, यहां तक प्रार्थना का प्रसंग संपूर्ण होता। अब चार श्लोक है। इस चार श्लोकों के सभी इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और उसके मूल में जो चित्त है, इसकी जो चाह है, और एक प्रार्थना करते हैं कि इस शरीर से, इस इंद्रियों से जो भी हो रहे नारायण, हे ईश्वर, तुम अब क्षमा करो। परंतु इसके बाद वाले एक भी श्लोक में क्षन्तव्यो मे पराध नहीं है। भक्त प्रार्थना करते 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 एक समय ऐसा वो भाव को, ऐसा एक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि बस वो अब और निवेदन नहीं, अब तो पूर्ण समर्पित समर्पण के साथ वो आत्म निक्षेप करके स्थित हो जाता है। कल इस विषय पर संपूर्ण करूंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। शिव शिव शिव।